पितामह भीष्म ने जब मोक्ष पर्व को कहना चालू किया तो उनके कहने में बड़ा बदलाव आया। पहले और उपदेश और ढंग से देते थे और उसके बाद और ढंग से उपदेश देने थे। अब हर उपदेश के साथ में एक आख्यान कहते हैं, एक दृष्टांत देते हैं, किसी का संवाद सुनाते हैं, कोई कथा भी बोलते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज कई कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो सकाम अनुष्ठान करते हैं और वहां हविष्यान्न खाते हैं, जो यज्ञ की सामग्री का अंश हविष्यान्न होता है उसको खाते हैं, क्या वो खाना चाहिए कि नहीं? पितामह भीष्म ने कहा कि ये एक स्वेच्छाचारिता है, ये स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। वैसे वो अन्न नहीं खाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि महाराज ये तपस्या क्या चीज होती है? लोग कहते हैं कि हम भूखे रहते हैं यही तपस्या है, उपवास करो ये तपस्या है, उपवासम पृथक जना, इसको तपस्या मान रखा है। आपकी दृष्टि में तपस्या क्या है महाराज? पिता मैंने कहा कोई आदमी 15 दिन भूखा रहता है, कोई महीने भर भूखा रहता है, ये सब अपने शरीर का शोषण करते हैं, इसका नाम तपस्या नहीं है। तपस्या एक अलग चीज है युधिष्ठिर। त्यागश्च सन्नतिश्चैव शिष्यति तप उत्तमम्। जिनके पास त्याग है, स्वार्थ का त्याग है और सन्नति माने विनम्र भाव है, वो सदाई तपस्वी होता है, वही ब्रह्मचारी है, वही सबसे श्रेष्ठ पुरुष उपवासी है, तपस्वी है, जो विनयशील है और त्याग रखता है। त्यागी और विनयी साक्षात देवता का स्वरूप माना गया है। कुटुंब में रहता हुआ भी वह महान तपस्वी है, मांस आदि का भक्षण न करे, सादा भोजन करे, पवित्र भोजन करे और अतिथि को भोजन कराने के बाद भोजन करे, वो आदमी भोजन नहीं करता है, वो अमृत पीता है। अपने घर में कोई बड़ा यज्ञ आदि का अनुष्ठान होता हो और एक तरफ अतिथि का सत्कार करना होता हो तो हम अतिथि सत्कार को यज्ञ से ऊंचा मानते हैं। युधिष्ठिर ने कहा महाराज अभी अभी आपने कहा कि जो त्यागी होता है, विनम्री होता है, वो सदा उपवासी होता है, ये सदा उपवासी कैसे होते हैं महाराज? और अतिथि का हरदम कैसे पूजन किया जाता है? पितामह भीष्म ने कहा कि देखो पांडुनंदन, अंतरा प्रातराशन च सायम आसम तथैव च, सुबह भोजन करता है उसके बाद भोजन नहीं करता, शाम को भोजन करता है, वो आदमी सदा उपवासी है। पवित्रता का भोजन, पवित्रता पूर्वक भोजन करता है, भोजन पदार्थ में पवित्रता रहती है, रोज दान देता है, वस्तु की बहुलता नहीं, दान का रोज क्रम रहता है और दिवा अस्वपन, दिन में नहीं सोता है, वो सदा तपस्वी होता है। जो माता पिता कुटुंबी जन सेवक और अतिथि इन सबको भोजन कराने के बाद जो भोजन बचता है उस भोजन से जो निर्वाह करता है अमृत भी उसके सामने महत्वहीन है। जो आदमी अतिथियों को दिए बिना भोजन नहीं करता, देवताओं के प्रसाद चढ़ाए बिना वो भोजन नहीं करता, वो बहुत बड़ा देव भक्त है। जो सेवकों को अतिथियों को भोजन न करने पर स्वयं ग्रहण नहीं करता है उसके पीछे स्वर्ग अपने आप दौड़ता रहता है, उसको स्वर्ग की भी जरूरत नहीं, स्वर्ग उसके पीछे चलता है। ऐसे पुरुष को अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। देवता पितर ये सब उसके साथ में चारों तरफ घूमते रहते हैं और ऐसे व्यक्ति के दर्शन करके वे कृतार्थ मानते हैं। इसलिए अतिथि का खूब आदर होना चाहिए, माता पिता का आदर होना चाहिए। घर में सबको भोजन कराने के बाद भोजन करने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज, कई तो विद्वान कहते हैं कि जड़ और चेतन ये दो चीज है संसार में, कोई कहते हैं कि तीन है, ईश्वर जीव और प्रकृति तीन चीज है, कोई कहते हैं कि चार चीज है, कोई कहते हैं दस चीज है, कोई कितना मर्जी सो बोलते हैं। और इतना भी नहीं, जो भी कोई बात बोलता है वो बात ठीक रहा, ये भी ठीक बोलते हैं, हाँ ये भी ठीक बोलते हैं, भाई आप भी ठीक बोलते हो, ये भी ठीक बोलते हो। यदि सभी बातें ठीक है तो एक कौन सी ठीक होगी उनमें? पितामह भीष्म कहने लगे कि संसार के अंदर शास्त्र बुद्धियां बहुत हैं, अपनी अपनी बुद्धि से जो बात कही जाए वो सब सही है, परंतु वास्तविक तत्व के विषय में कोई कह नहीं सकता है। प्रकृति के विषय में कह देंगे साहब संसार है, प्रकृति है, तीन गुण है, पांच भूत है, वहां तो संख्या बता देंगे, आत्मा परमात्मा के विषय में संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बार की बात है, हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं। एक बार की बात है कि सारे ऋषि मुनियों ने विचार करके ये सोचा कि भाई एक बताओ, एक निर्णय करो, चार पांच निर्णय दस निर्णय ठीक नहीं है। तो वहां 6000 ऋषि मुनि हिमालय पर इकट्ठे हो गए। तो हिमवत पार्श्वम आसीनाः, हिमालय के वहां 6000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। उन्होंने आपस में विचार किया, आप देखो क्या, कोई तो कहता है कि ये संसार सत्य है, अनादिकाल से चल रहा है, जन्मते मरते संसार सत्य है, केचित् ध्रुवम विश्वम, और कोई कहते हैं कि ईश्वर सच्चा है, कोई कहते हैं कि ईश्वर के बिना ही संसार हो गया, कोई कहते हैं कि जन्मना मरना संसार का होना ये प्रकृति का कार्य है, जैसे वृक्ष अपने आप बड़ा होता है फलवान होता है ऐसे ही संसार जन्मता है मरता है, इसमें ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, इसमें ईश्वर क्या करेगा। किसी लोगों ने कहा कि अरे भाई स्वभाव है, स्वभाव जिसका जैसा जानने का मानने का स्वभाव वैसे ही देखता, हाँ भगवान है कि हाँ भगवान है, कोई तो भगवान नहीं कि हाँ भगवान नहीं, कोई कहते हैं कि देखो यहां आए हो पुरुषार्थ करके जाओ, पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उनके बीच में बातें हुई। कोई किसी शास्त्र का उदाहरण दे, कोई किसी शास्त्र का उदाहरण दे, और सब ब्राह्मणों ने विचार किया कि मेरी बात रहे, वो कि मेरी बात रहे। ऐसे आपस में खूब खटपट हुई। अब बताओ, पूरी बात बताएंगे तो आप देखेंगे कि महात्मा लोग करते क्या है। पर यहां लिखा है किसी के हाथ में दंड था, किसी के हाथ में क्या था, सब वो हजारों ब्राह्मण लड़ने लगे। पात्र दंड विघातन चे, और उनके पास में जो पात्र थे, दंड थे, वलकल, मृग चर्म, ये सब आपस में एक दूसरे से यूं लड़ने लग गए। लड़ते 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 थक गए, शांत हो गए अपने आप ही। देखो, जब लड़ाई में छुड़ाएंगे ना तो लड़ाई ज्यादा बढ़ती है। लड़ लो थे थाना आपस में, जितो लड़ना, लड़ लड़ार ढीला हो गया। तब वशिष्ठ जी बैठे बैठे, वशिष्ठ जी एक तरफ बैठे हुए थे, वशिष्ठ जी के पास आए और वशिष्ठ जी से कहा, महाराज लड़ झगड़ के देख लिया, हम कोई निर्णय पर नहीं पहुंचे, हमारा अभिमान अंदर था। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक मन में आग्रह दुराग्रह होता है कि नहीं यही बात ऐसी है, अब हमको समझाओ, वो आदमी नहीं समझ सकता। ना हम जानामि त्वमनो ब्रूहि सनातनम, आप हमको सनातन विषय के बारे में बताओ। वशिष्ठ का मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं कि महाराज क्यों करो, लड़ाई करो पहले आपस में। क्या महाराज भूल होगी, मैं नहीं जानता। वहां पर नारद जी महाराज थे, नारद जी के पास आए कि तमनो ब्रूही महाभाग है तत्वविच्च भवानसी, आप तो तत्ववेत्ता हो, आप बताओ महाराज, हम आपसे पूछते हैं। नारद जी की भी त्योरी चढ़ गई। नारद जी ने कहा, ना हम जाना, मैं भी नहीं जानता हूं, हम नहीं जानते। क्या महाराज ये क्या उत्तर दे रहे हैं आप, ये जानने का ज्ञान का ये ढंग होता है? ब्राह्मणों, जहां अभिमान का त्याग होता है वहां ज्ञान का उदय होता है। आप लोग अपना अपना मत रखते हुए तत्व को जानने की बात करते हो, कभी नहीं होगा। को विद्वान ये लोकेस्मिन मोह अमृतम अद्भुतम, ऐसा कोई संसार में हुआ जिसके अहंकार न हो और ज्ञान की प्राप्ति, अहंकार हो और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और अहंकार न हो और वो अज्ञानी रह गया। सब चुप हो गए कि वशिष्ठ जी ने भी फटकारा और सबने फटकारा, चुप हो गए। इसी समय एक आकाशवाणी हुई, ओ ब्राह्मणों, सन्नद्धाम द्विजा गत्वा पृच्छद्वम सतवक्षति, आपको यदि तत्व के विषय में जानना हो तो तुम सब सनत कुमार के आश्रम में जाओ, मगर याद रखना उसके आश्रम में जाओ तो ऐसा भोंडा प्रदर्शन मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, अहंकार मत रखना। ऋषियों ने कहा, महाराज अहंकार से तत्व ज्ञान नहीं होता, ये हमारे समझ में आ गई बात। उन ऋषियों में एक विभांडक नाम के ऋषि थे, वो कहने लगे कि आकाशवाणी में कौन बोल रहा है, बात तो बड़ी अच्छी कह रहा है, सनत कुमार के पास जाना कितनी अच्छी बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हम चले तो जाएंगे, पर आप बोलने वाले कौन हो, जरा दर्शन तो दो। क्यों, अजी आप दर्शन दोगे, हम ब्राह्मण लोग आपके चरणों में प्रणाम करेंगे, हमारी गलतियां सुधारेंगे, क्योंकि चरणों में प्रणाम करने से वो गलती सुधर जाती है, आप हमारे सामने प्रकट होइए। हमारे आपस के अंदर एक तत्व को लेकर जो मतभेद हो गया था, उसके लिए आपने ये सत्संग करो, सनत कुमार के पास जाओ, ये जो बात कही ऐसी लगी जैसे कोई भयंकर आतप में गर्मी के अंदर किसी को एकदम ठंडा ठंडा जल पिला दिया हो, बड़ी शांति मिली। जलती बढ़ती आत्मा साधु सरोवर जाए, तब ये सब के सब सनत कुमार जी के पास गए और हाँ अभी गए नहीं, जाने के लिए तैयार हुए। वो आकाशवाणी में बोलने लगा, कहने लगा कि मैं ही सनत कुमार हूं, ऐसा ही तुम समझो। माम ऋषिम पुराणम, मैं ही पुराण सनत कुमार हूं ऐसा समझो। तब विभांडक ऋषि ने फिर प्रश्न किया, आप यदि सनत कुमार हैं तो उनके आश्रम में जाने की बात क्यों कहते हैं? आप स्वयं प्रकट होकर कह दो कि मैं हूं, ऐसा बोल दो। तब ये बात बोलने लगे, कहने लगे कि देखो क्या बताऊं, मैंने दर्शन इसलिए नहीं दिए कि मेरे कान नहीं, मेरे आंख नहीं, मेरे कोई नाक नहीं, मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर नहीं, मेरे पेट नहीं, मेरी पीठ नहीं, कैसे दर्शन दूं? आप तो नाक कान आंख पैर पीठ पेट मानने वाले, और मेरे तो ये है नहीं, अब मैं बताओ कैसे दर्शन दूं? और सनत कुमार के आश्रम में जाओगे तो वहां पर मैं हाथ पैर सब सब से युक्त तुमको मिल जाऊंगा। बोलो क्या समझे? तब उन्होंने हाथ जोड़े कि महाराज आपकी वाणी बड़ी रहस्यमय है, आत्मा का बोध तो इतने में ही हो गया, क्योंकि आत्मा के न हाथ है न पैर है न पेट है न पीठ है, कुछ है ही नहीं। और आप कहते हो कि वो जो है सनत कुमार है, वहां जाओगे तो मैं इस रूप में आपको दिख आऊंगा, ये भी बड़ी विचित्र है कि जो है वो आप ही हो, जो संसार में है वो हे प्रभु आप ही हो, जो नहीं है उसमें भी आप हो और जो है दिखता है उसमें भी आप हो, आपका कभी अभाव नहीं होता। आश्चर्यम इति मत्वा थे, बड़ा आश्चर्य है। फिर वो आकाशवाणी गा रहे, ऋषियों तुम अपने को पहचानो, अपने को, मेरी आकाशवाणी सुनकर मुझे दर्शन देने के लिए बोलते हो, तुम अपने को पहचानो कि बोलता कौन है, तो सुनता कौन है, तो सुनता कौन है, चखता कौन है, कौन है ये? आकाशवाणी के लिए तुमने विचार किया, तुमने अपने से कभी प्रश्न नहीं किया? जरा बैठ करके एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए था। अब जाओ सनत कुमार के आश्रम में जाओ। तब वे सनत कुमार के आश्रम में गए, आश्रम में जाकर सब ने सनत कुमार के दर्शन करके उनको प्रणाम किया और फिर जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे सनत कुमार जी, आप तो ज्ञान के खजाने हो, हम लोगों को बताओ, हम कुछ जानना चाहते हैं कि उस परमेश्वर का स्वरूप क्या है। यक्षामहे विश्वरूपम कुमार, आप हमारे पर प्रसन्न हो जाइए और मधु प्रयाताय सुखाय संत है, और हम जो सब आपके शरणागत हो गए ना, हमको आप सत्संग का अमृत पिलाइए महाराज, क्योंकि उस सत्संग के अमृत के पिए बिना हमारे अंतःकरण में शांति नहीं है। तब सनत कुमार जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, अभी आपको जिसने अव्यक्त रूप से कहा था ना, उसका कथन बिल्कुल सही है। आप लोग जानते नहीं हो, इस विषय को खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि समझ का उपयोग परमात्मा की तरफ लगाओ। शृणुध्वम परमम कारणम अस्ति, वो परमात्मा है, वो सबको जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। न बिभेति, न वो किसी से भयभीत होता है, नहीं कहीं आता है, नहीं कहीं जाता है। और उस परमात्मा में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरा कौन है, मैं किससे पैदा हुआ हूं। ये सब बातें परमात्मा के अंदर पैदा ही नहीं होती। सयुक्तो व्यापी, वो प्रत्येक युग में ज्यों का त्यों रहता है। सपृथक स्थित है, और वो सबके अंदर रहता हुआ भी सबसे अलग है। है घट भीतर न्यारो को न्यारो, सबके अंदर सबसे अलग। वेणु संशय है, जिस प्रकार से वायु होती है, वायु, वो वायु बांस में भी रहती है, मनुष्य में भी रहती है, बकरी में भी रहती है, ऊंट में भी रहती, गधे में ही रहती, गाय में रहती, सब में वो रहती है, पर सबके अंदर एक ही अलग अलग ढंग का काम करती है। बांस के अंदर जाएगी तो आवाज पैदा करेगी, बंसुरी में आवाज, वो हवाई तो है और क्या है, आवाज पैदा करेगी, लोगों को जिलाएगी, मक्खी मच्छर छोटे छोटे प्राणी उसमें भी वायु है, हाथी जैसे विशाल वो भी उनमें भी वायु है, ऐसे आत्मा है वायु के समान। और जो कुछ ये प्रतीत होता है, ये सब वास्तव में प्रतीत ही होता है। प्रतीत होना माने बैम से दिखना, बहम से दिखना, जैसे ये प्रतीत हो रहा है, एक एक अंगुली हो रही हूं, ये अंगुलियां ना, ये दो दिखता है, ये प्रतीत होना है। प्रतीत होना माने झूठे ही दिखाई देना। तो ये शरीर, ये कुटुंब, ये धन, ये मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरा ये शास्त्र है, ये सब बातें झूठी हैं, प्रतीत है ये प्रतीत। वो परमात्मा ही सब जगह, एक ही अनेक जगह है, गिरते पड़ते उड़ते चलते बैठते एक नारायण तत्व की तरफ ही विचार रखना चाहिए। उसका जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप को कोई वाणी से न कह सकता है और न उसको कोई समझ सकता है। न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम, कश्चन एनम चक्षुषा न पश्यति, आंख से दिखाई नहीं देता, हृदय आदि में वो नहीं उतरता। न वो धर्मी है न अधर्मी है, सबका प्रकाशक सबसे अलग है। ऐसा भीष्म पितामह के ऐसा उन्होंने ज्ञान दिया। उस ज्ञान से क्या हुआ, वो ऋषि मुनि वहीं पर बैठ करके और स्थित हो गए, अपने स्वरूप में स्थित होकर सनत कुमार जी को कहा कि महाराज सत्संग से बहुत कुछ मिलता है, हमारे अंदर रही हुई चीज, हमारे अंदर का खजाना, हमारे अंदर का वो ज्ञान सागर संभवम, कितना हमको ये बोध हुआ है, कृपा किया आपने, हम जानते ही नहीं थे, अब हम जान गए कि ज्ञानमेव महाराज सर्व दुख विनाशनम। सत्संग के द्वारा जो ज्ञान होता है, समझ बढ़ती है, सारे दुख उससे नष्ट होते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज इस उपाख्यान से तो हम बड़े प्रसन्न हुए, अब हमको बताओ कि जो मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करता है, उसके सामने सुख दुख रूप आदि भोग आते हैं, परंतु जो मनुष्य शुभ करता है वो वास्तव में उस कर्म का करता है कि नहीं, जहां कहीं कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, सबसे अलग है, फिर ये कर्म को करता कौन है? क्योंकि कर्म का कोई कर्ता बनेगा तभी ही वो उसका भोक्ता बनेगा, और भोक्ता बनेगा तो कर्ता बनना जरूरी है, और आप कहते हो आत्मा न करता है न भोगता है, ये क्या मतलब है महाराज? पितामह कहने लगे, देखो इस विषय में मैं तुमको प्रह्लाद और इंद्र की कथा सुनाता हूं। क्या प्रह्लाद जी थे, कैसे वे भगवान की आराधना करने वाले, वो बड़े अपने आप में कुलीन, बड़े चराचर प्राणियों में प्रेम करने वाले, किसी की निंदा स्तुति करते नहीं, उनकी कोई निंदा स्तुति करो तो उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं, सब कुछ जानने वाले प्रह्लाद जी महाराज चुपचाप बैठे हुए थे। तब उनके सामने इंद्र आया, इंद्र आया तो इंद्र ने कहा कि प्रह्लाद जी, संपूर्ण संसार के मनुष्यों में जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनमें जो जो गुण होते हैं उनमें सारे गुण एक यदि किसी में देखा जाए तो वो आप में है, और वो गुण भी अनपगान, बिल्कुल सदा स्थिर रहने वाले गुण है आप में, कभी बिचड़ने वाले नहीं, इधर उधर गुण आपके जाने वाले। ये बुद्धि आपको कैसे मिली, कितना कितना आपको पिता ने कष्ट दिया, लेकिन आपने उस कष्ट को अपने अंदर माना ही नहीं कि मेरे पास कोई कष्ट है ही नहीं। आत्मानं मन्यमानसं प्रेय किमि मन्यसे, इस जगत में आपने आत्मज्ञान को जो इतना आदर दिया है ये किस कारण से दिया महाराज, और कैसे दिया? आपको रस्सियों से बांधा, आपको अग्नियों में फेंका, आपको शस्त्रों के द्वारा काटा गया, आपको लक्ष्मी से विहीन कर दिया, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बदली, वैसी की वैसी प्रसन्नता। हम आपसे ये पूछते हैं कि ये आपने कोई आत्मज्ञान से प्राप्त किया या आपके अंदर कोई धैर्य था, उस धैर्य शक्ति से प्राप्त किया, किसे ये गुण प्राप्त किया? संसार के अंदर जितना सुख दुख का भोग होता है वो अज्ञान के कारण से होता है। प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को जो नहीं जानता वो मोह में पड़ा हुआ सुखी दुखी होता रहता है, चक्र में पड़ा रहता है, और उनका सुखी दुखी होने का स्वभाव तक पड़ जाता है। जो सुखी दुखी हुआ स्वभाव पड़े, सुख दुख तो स्वभाव से करते करते उसमें धारणा बन जाती है कि भाई सुख दुख तो स्वाभाविक है, ये तो होगा ही, ऐसे उनके अंदर स्वाभाविकता आ जाती है। मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो यदि मनुष्य अपने आत्म कल्याण में कर्म करेगा तो यहां ये स्वतंत्र है। असल में मनुष्य को, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी बातें मिलती नहीं है। पितामह भीष्म ने कितनी अच्छी बात कही प्रह्लाद के मुख से कि आत्मश्रेय से आत्म कल्याण करने के लिए मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, और संसार के अंदर संसार की प्राप्ति के लिए कर्म करेगा उसमें मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, उसमें जो मिलेगा वो प्रारब्ध से मिलेगा। आरंभास्तस्य सिद्धेयुः न तु जातु परा भवेत्। इस आत्मकल्याण में कभी वो पराभव को माने हार को प्राप्त नहीं होगा, निश्चित रूप से उसकी सफलता होगी, और संसार में जाएंगे अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे पर उल्टा हो जाएगा। हो सकता है हम नहीं चाहते कि दुख मिले लेकिन दुख मिलेगा, हम चाहते हैं सुख मिले सुख नहीं मिलेगा। पर ये तो देखो बहुत अच्छी बात है, ये प्रारब्ध की बात है, भाग्य की बात है, मनुष्य को कल्याण के लिए जागृत रहना चाहिए। इस संसार में कितने आश्चर्य की बात है, लोग बड़े बुद्धिमान हैं और बड़े स्वरूपवान हैं, रूप भी उनका अच्छा, बुद्धि भी खूब काम करती है, सब कुछ है, लेकिन क्या करते हैं, विरूपेभ्यो अल्प बुद्धिभ्यो लिप्समाना धनागमम बड़े कुरूप हैं, काले कलूटे, रात दिन धन की चिंता में जलते रहते हैं। महाराज जी ने तो कहा कि जो रात दिन धनी धन का चिंतन करता है उसका चेहरा काला पड़ जाता है और उसका रूप बदरूप हो जाता है। परमात्म तत्व का चिंतन करता है उसके चेहरे पर ही और अलग भाव रहता है। तो पितामह भीष्म बोलते हैं कि ऐसे बुद्धिमान स्वरूपवान पुरुष कुरूप बने हुए बहुत थोड़ी जिनमें बुद्धि है और रात दिन धन में लगे हुए हैं उनके पास जाकर याचना करते हैं कि हमको धन दे। अब क्या करें, ऐसी ऐसी बात है। यथा वेदायते कश्चित ओदनम वायसो ह्यदन, एक कुत्ता एक यदि कौवा चावल को खाने लगता है तो काव 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 करके जोर जोर से सब कौओं को बुलाता है और बुला करके एक तरह से कहता है कि आओ आओ तुम भी खाओ तुम भी खाओ तुम भी खाओ। और मनुष्य की ये क्या स्वार्थ की प्रवृत्ति पड़ी है कि बस जो मिल जाए वो मेरे को ही मिल जाए, कुत्ते से भी गया ये कौवे से भी गया बीता है। एवं सर्वाणी कर्माणी ऐसे है। तो देखो प्रहलाद जी कहते हैं इंद्र न जो मुझे स्वर्ग की परवाह है, न मुझे नरक का डर है, न पशु पक्षी आदि में जाने का डर है। मैंने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, अब मुझे कुछ जानने की भी इच्छा नहीं है। इंद्र ने कहा वाह महाराज, ये शांति कैसे मिलती है, ये ज्ञान ये आत्मज्ञान कैसे हुआ। प्रहलाद जी ने कहा देखो, एक तो वृद्ध शुश्रूषया, घर में बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप सास ससुर दादी सासू और वो घरे बड़े बूढ़े हैं, एक तो उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करो। एक आर्जवेन है, एक हरदम हृदय में विनम्रता का बर्ताव रखो। एक एक कहते हैं कि किसी के सामने कड़वे वचन से मत बोलो, कड़वा वचन मत बोलो। प्रसादेन हरदम प्रसन्न रहो और आत्मचिंतन करते रहो, इसके द्वारा आपके अंदर स्वतः ही ऐसी वृत्ति पैदा हो जाएगी। जब आपका स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा तो आपके अंदर शांति संतोष सब आ जाएंगे। इंद्र ने कहा कि हे प्रहलाद जी, मैं कहने के लिए तो देवराज इंद्र हूं लेकिन ज्ञान के अंदर मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। विस्मयम आगमत, बड़ा उसको आश्चर्य हुआ और फिर वो अपने स्थान पर चला गया। कहते हैं महाराज किसी का भाग्य ऐसा ही हो गया कि हाथ में से राज्य निकल गया, लोग उसको हाय त्राही करते हो, अपमानित करते हो, और कालचक्र कुछ ऐसा ही आ गया। अब बताओ महाराज उसको इस संसार में कैसे रहना चाहिए, लोग तो बात बात पर अपमानित करते हैं। कहते हैं इस विषय में भी हम तुमको एक दृष्टांत सुनाएंगे। इंद्र का और राजा बलि का संवाद हुआ। क्या हुआ महाराज, ये तुम जानते हो देवताओं में असुरों में खटपट रहती थी, एक बार इंद्र है वो राजा बन गया, बलि बिचारा इधर उधर कहीं छिप गया कहीं, तो इंद्र ने उस बलि को खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला तो इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगा ब्रह्मा जी मैं उस बलि से अपना पूरा बदला लेना चाहता हूं, यदि वो बलि मुझे मिल जाए तो मैं उसको मारूंगा, वो कभी वायु बन जाता है, कभी सूर्य चंद्रमा में घुस जाता है, कभी वो अग्नि में चला जाता है, उसका एक स्थूल स्वरूप दिखाई नहीं देता, यदि वो कहीं ऐसा है तो आप मुझे बताओ वो कहां है। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र जो आदमी जितने बड़े पद पर रहता है उसको उतना ही छोटा बच्चे जैसा स्वभाव बनाना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। ये क्या तुमने अपने मन में विचार कर लिया? तुम यदि बलि को मारोगे इससे तुम सुखी हो जाओगे? सुखी हो जाओगे? इंद्र ने कहा, महाराज मैं एक बार बलि से मिलना चाहता हूं, बता तो दूंगा, लेकिन अपने मन में विचार करो कि तुम बलि को जाकर मारोगे। कौन? देवराज इंद्र। किसको? जो कभी त्रिलोकी के ऊपर शासन करता था, ऐसे महाराज बलि को मार दिया इंद्र। फिर आप इंद्र पद पर रह जाओगे? फिर आपका कहीं सम्मान होगा? इंद्र चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा काम बताने का, बता देता हूं। आगे क्या करना है ये सब काम तुम्हारा है। उष्ट्रेषु यदि वा गोषु खरेष्वश्वेषु वा पुनः वरिष्ठो भविता जंतु शून्यागारे सची पते। किसी जंगल में एकांत में चले जाना। जंगल के अंदर एकांत कोई मकान हो, उस मकान में तुमको यदि ऊंट दिखावे या गधा दिखावे या फिर कोई घोड़ा दिखावे या गाय दिखावे, ये चार तुमको यदि पशु दिखावे तो उनमें से तुम उसको बलि समझ लेना। चले गए इंद्र। ठीक है महाराज, तो देखना ए इंद्र, याद रखना बलि का वध मत करना। बलि के वध करने से तुम्हारा महान अनिष्ट होगा, मेरी इस बात को याद रखना। न्यायस्तु शक्र प्रष्टव्यस्त्वया वासव काम्यया। तुम जाओ उसके साथ वार्तालाप करो, बातचीत करो, लेकिन यदि शस्त्र उठा दिया और यदि तुमने बलि को मार दिया तो फिर इंद्र तुम्हारी स्थिति कुछ और हो जाएगी। इंद्र डर गया। ब्रह्मा जी ने फिर याद दिलाया कि इंद्र, शत्रु को सदा शत्रु नहीं समझना चाहिए। जिस समय तक युद्ध होता है उस समय तक शत्रु मानकर शस्त्र चलाओ, युद्ध की सीमा के बाहर उसके साथ गले मिलकर के रहो, प्रेम के साथ रहो। ये श्रेष्ठ पुरुषों का युद्ध होता है। युद्ध के समय में कोई कमी मत रखो, बाण चलाओ, शस्त्र चलाओ, तेरे पास वज्र है वो चलाओ, लेकिन कोई हरदम शत्रु रहता है? ऐसी यदि तुम शत्रुता पालोगे तुम्हारे हाथ से राज्य चला जाएगा। दैत्यों के साथ में राज्य था, क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ सदा शत्रुता रखी। हम लोगों ने तुम्हारा पक्ष क्यों लिया? लेकिन तुम भी यदि दैत्यों के समान ऐसा ही बैर विरोध संसार में बढ़ाओगे, कलह बढ़ाओगे, तुम्हारे हाथ से भी राज्य चला जाएगा। इंद्र देखा जाए तो बलि तुमसे गुणों में बहुत श्रेष्ठ है। ले तो उसका गुण ले, उससे शिक्षा ले, उससे तुमको लाभ मिलेगा। तुम तो उसी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इंद्र की आंखों में पानी आ गया। महाराज, हे ब्रह्मा जी, ये आंखों का जल नींद बरस रहा है, मेरे हृदय के अंदर द्वेष, जलन, पाप, कुत्सित भावना वो मेरे अंदर से बह गई। हृदय बड़ा शांत हो गया। प्रभु, बैर विरोध को छोड़ते ही मनुष्य को ऐसी शांति मिलती है जैसे अपने छाती के ऊपर रखा हुआ आग का अंगारा दूर होते ही शांति मिलती हो। अब मैं उनके साथ मारने का इनका बर्ताव नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ इंद्र, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। गुणवान का सारा संसार पक्ष लेता है और अन्याय का सब विरोध करता है। इंद्र गए, मन के अंदर बड़ा दुख हुआ कि अरे इतना बड़े पद पर रहते हुए ये पशुओं जैसा मेरे अंदर भाव आया। बड़ा कष्ट हुआ उसको, अपने आप पर ही चला गया, खूब शून्य जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि इंद्र मुझे किसी भी रूप में मिले, सॉरी बलि मुझे किसी भी रूप में मिले, चाहे ऊंट के रूप में मिले, चाहे गधे के रूप में मिले, चाहे वो गाय के रूप में मिले, चाहे वो घोड़े के रूप में मिले, जैसे भी मिले मैं उसके साथ प्रेम से मिलूंगा। ऐसे हृदय में प्रेम उमड़ा और एक शून्य मकान के वहां पर पहुंच ही गया। और खर वेशेण समृतम, वो गधे के रूप में ही था और वहां घास चर रहा था। तो अंदर से तो बड़ा विचित्र भाव था उसका, इंद्र का, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसका मन बदल दिया। ऊपर से वो बात करता है, अरे आओ बलि, क्या बात है, गधे बने हुए घास फूस खाते हो, शर्म नहीं आती आपको क्या? देखो तुम्हारा भाग्य चक्र, तुम्हारे पीछे हजारों हजारों गंधर्व लोग छड़ी लेकर चलते थे, छत्र लेकर चलते थे, चवन लेकर चलते थे, तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, गधे के रूप में आए और एक सूखा पाती तुमको घास खाने को मिला। तन्मुखाश्चैव देतेयाः व्याकिष्ठं तव शासने, तुम्हारे जरा से मुंह खोलते हजारों दैत्य तुम्हारी आज्ञा के पालन के लिए खड़े रहते थे। कहा वो दिन, कहां रह गया वो, क्या तुम्हारी दशा हो गई? तुम जब यज्ञ करते थे तो इतना विशाल वो यज्ञ का स्तूप होता था कि जिसको देखने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी देखते, इतना ऊंचा विशाल यज्ञ का स्तूप डंडायो, ताकि दूर दूर तक सब लोग आओ यज्ञ का दर्शन करने के लिए। आज कैसे पड़ा है, तो तेरे को तेरे पर लाज नहीं आती, तेरे को घुट घुट करके मर जाना चाहिए, गधे की जून में पड़ा हुआ है तू। पितामह भीष्म ने कहा, बलि महाराज जोर से ठहाका मार के हंसे, कहने लगे इंद्र, कोई आदमी यदि गिरता पड़ता दिखिया है उसकी सहायता करनी चाहिए, या उसको गिरते पड़ते के ऊपर पत्थर फेंको, उसको मार दो, उसको और गिरा दो, साधुता किसमें है इंद्र? गिरे को उठाओ, उसको सहायता करो। अहो तव बालिश्यस्य, आप तो वास्तव में बहुत भोंडा प्रदर्शन कर रहे हो, आपके मुख से देवराज इंद्र ये बात अच्छी नहीं लगती है। तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा वैभव कहां है, मेरा वैभव कहीं छिपा हुआ है, गुफा में छिपा हुआ है, मेरी चीज मेरे अंदर छिपी हुई है, उसको तुम अपने वज्र के द्वारा, तलवार के द्वारा, शस्त्र के द्वारा मारपीट करके भी नहीं ले सकते जो मेरे अंदर है। अरे श्रेष्ठ पुरुष कौन होते हैं इंद्र, ये काल चक्र है, उसमें कभी कभी राज्य मिल जाता है तो कभी आदमी रंक बन जाता है, कभी काल चक्र से इंद्र बनता है तो कभी वो गधा बनता है, काल चक्र का प्रभाव है। यही तो दुनिया को मुझे बताना है कि नहीं दुखे सुशोचनते न ऋष्यन्ति चार्थिषु, चार्धिषु, अरे आदि व्याधि के अंदर शोक मत करो, और जो है रिद्धि सिद्धि मिल जाए तो उसमें हर्षित मत, वो खूब बड़ी चीज मिल जाए राजी हो गए, ऐसा जीवन क्या काम का जो क्षण भर में कुछ और है और क्षण भर में कुछ और बना दे, ऐसा नहीं किया जाता। इंद्र ने कहा, तू चाहे कुछ भी कहे, ये बात आज तेरे मुख से अच्छी नहीं लगती बलि महाराज, ये आपको तो इंद्र के आसन पर बैठते हुए त्याग की बात बोलते अच्छी लगती, आज आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। बलि ने कहा कि अरे अनित्य चीज के लिए तुम अभिमान करते हो, अनित्य वस्तु के लिए तुम शोक करते हो, ये तो मेरे अंदर तुच्छता अब भगवान करे आवे ही नहीं। मैं इस गर्दभ शरीर को जान रहा हूं, लेकिन मैं इस गधे के शरीर के अंदर विवश नहीं हूं, स्वतंत्र हूं। मैं चाहे जैसा शरीर बना सकता हूं। अभी देवराज इंद्र, तुम यदि चाहो तो तुमसे भी बढ़िया शरीर बना करके मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो सकता हूं, परंतु क्या फायदा? ऐसा बनाना ठीक नहीं है। जैसे नदियों का प्रवाह सीधा सागर की ओर जाता है, ऐसे मनुष्य के जीवन का प्रवाह काल की ओर बढ़ता जाता है। मैं अपने को मुंह में डालना नहीं चाहता हूं, इसलिए मेरे अंदर छिपी हुई शक्तियां उनको मेरे अंदर ही रख रहा हूं और अपने वैभव को प्रदर्शित नहीं करता हूं, क्योंकि काल है ये जलेवे को जलाता है। दग्धम एवानुदहति हतेमावानुहन्य हतम एवानुहन्यते, मरेवे को ही मारता है और नश्यते नष्टमेवाग्रे, नष्ट वे को ही नष्ट करता है। लब्धव्यम लभते न रहे, इसलिए जो कुछ मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए इस काल चक्र के प्रवाह में पूर्णता आने से पहले, मरने से पहले पहले उसको जो करना चाहिए वो काम कर लेना चाहिए। तुम समझते ही नहीं हो कि तुम और इंद्र दो हो कि एक हो। तुम अपने को क्या मान रहे हो? इंद्र इंद्र मानते हो, त्रिलोकी का राजा मानते हो? जब मैं वहां स्वर्ग का शासक था तब तुम अपने को क्या मानते थे? क्या तुम्हारे सामने पराजय नहीं आई और अब तुम जीत गए तो तुम्हारी विजय नहीं, विजय हो गई तो मेरी पराजय हो गई? तो ये विजय पराजय हारना जीतना सब में होता है। तुम चाहे हमको इस गर्दभ योनि में भूसा खाते हुए कुछ भी कहो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने भी तो कितना कितना सुख देखा है, कितनी कितनी चीजें मैंने प्राप्त की हैं। काल का स्वरूप तुम नहीं जानते, एक क्षण होता है उससे भी कितना ही छोटा समय लेता है, वहां से लेकर के कितना लंबा काल होता है। उस काल के अंदर सभी का नाश होता है। ऐसी बातें हो रही थी, इतने में ही उसमें से लक्ष्मी निकली हो, उस गधे के शरीर में से लक्ष्मी निकली, जगमगाती हुई कांति दिखी। बलि महाराज हंसे और इंद्र आश्चर्य में डूब गया। इंद्र ने कहा कि बलि महाराज, मैं तो आपसे ज्ञान की बातें लेने के लिए इतनी बात कही थी, मैं आपको चिढ़ाने के लिए नहीं आया था। मैंने देखा कि जब व्यक्ति को कभी थोड़ी उद्वेलना होती है तो आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय से तीखी तीखी ज्ञान की बात निकलेगी। ज्ञान की बात तो बड़ी अच्छी निकली, ये दिव्य रूपा कौन है? कहे तुम इन्हीं से ही पूछो ये कौन है और मेरे पास क्यों रहती है, आप जानते नहीं इनको, ये तुम ही पूछो। इस स्त्री से तुम ही पूछो कि तुम गर्दभ योनि में पड़े हुए बलि के पास क्यों थी, ये कौन है ये? तो इंद्र ने पूछा किमिदम त्वम मम कृते, कौन है आप? मुझे तो आप लक्ष्मी से मालूम देते हैं, तुम यहां बलि के हृदय बलि के शरीर में से कैसे प्रकट हुई? लक्ष्मी जी ने कहा देखो इंद्र, ये काल का चक्र होता है और इस काल के चक्र को बताने के लिए, तुमको ठीक पाठ पढ़ाने के लिए कि चाहे बलि के पास अभी राज्य भले ही ना हो, बलि के पास अधिकार भले ही मत हो, बलि के जो स्वयं के चरित्र के गुण हैं, चरित्र से जो शोभा है, बलि के जो दिव्य इसमें विशेषता है, वो विशेषता ही तो मैं हूं, मेरा नाम लक्ष्मी है। तो क्या आपने बलि का त्याग कर दिया? यदि बलि का त्याग कर दिया हो तो आप मेरे अंदर समाविष्ट हो जाओ इंद्र, अभी आपके अंदर समाविष्ट नहीं होऊंगा। क्यों? तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर देवराज इंद्र होने का बहुत अहंकार होता है, इस अहंकार के रहते हुए मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। तुम मुझे जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूं, क्या हूं। ऐसे करके इनका खूब आपस में संवाद हुआ। संवाद होने के बाद फिर महाराज बलि थे वो दक्षिण दिशा में चले गए और इंद्र थे वो उत्तर दिशा में चले गए और विचार कर लिया कि इस अहंकार के कारण से लक्ष्मी, सुख, शांति, संतोष, मुदिता ये मेरे पास नहीं रह सकते। अब इस अहंकार का नाश करना है, ऐसा विचार करके इंद्र वहां से लौट गए। अब आगे बीच में उनको राजा ये दैत्यराज नमुची मिलते हैं इंद्र से, और नमुची का और इंद्र का आपस में बड़ा संवाद होता है। उस संवाद के अंतर्गत कई बातें, दूसरी भी सत्संग की बातें आएंगी।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन।